तो आज आप लोग जानते हैं बहुत विशेष दिन है। आज क्या है क्या है? आज भीष्माष्टमी है। भीष्माष्टमी का मतलब जानते क्या है? क्या है भीष्माष्टमी का मतलब? आज उन्होंने शरीर छोड़ा, आज भीष्म देव ने शरीर छोड़ा है और ये पौष शुक्ला अष्टमी, पौष शुक्ला अष्टमी की तिथि आज है जिस दिन भीष्म देव ने अपना शरीर छोड़ा। तो भीष्म देव का जो चरित्र है वो बहुत दिव्य है, उनकी बड़ा बहुत महिमा है, है? श्रीमद् भागवत में भी पूरा अध्याय है, है? भागवत के प्रथम स्कंद का नवा अध्याय पूरा, उसमें एक अध्याय पूरा इसी पर है कि उन्होंने किस प्रकार से भगवान की स्तुति की और अपना शरीर छोड़ा, है ना? तो वो पढ़ने लायक है। लेकिन आज हम श्री महाभारत से भी ये घटना पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन जो श्रीमद् भागवत का नवा अध्याय है पहले स्कंद का, वो पढ़ने के लिए, आप लोगों के पढ़ने के लिए है कि भीष्म देव ने कैसी स्तुति की भगवान कृष्ण की और एक एक श्लोक पर प्रभुपाद ने कितने लंबे लंबे तात्पर्य दिए हैं। तो वो सब है पठनीय है, आज के दिन पढ़ना चाहिए, स्मरण करना चाहिए भीष्म देव के इस प्राण त्याग की घटना का। तो हम जो महाभारत से पढ़ रहे हैं ये अनुशासन पर्व, अनुशासन पर्व में ये अध्याय संख्या है 167, 167 अध्याय संख्या और 168 अध्याय संख्या, ये अंतिम अध्याय है अनुशासन पर्व के। तो इसमें भीष्म देव का जो है शरीर त्याग होता है उसका वर्णन इसमें आ रहा है। तो इसमें बहुत विस्तृत चरित्र है, भीष्म देव का चरित्र बहुत विस्तृत है, घटना बहुत विस्तृत है, लेकिन हम तो अब केवल उसी दिन की घटना आपको पढ़ के सुनाएंगे कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव की आज्ञा से चले गए हस्तिनापुर और भीष्म देव ने कहा कि जब उत्तरायण का समय आएगा तो मैं शरीर छोड़ूंगा, तो आप लोग जो है तब तक अपने राज्य करिए, राज्य शासन करिए। तो अब युधिष्ठिर महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भीष्म देव ने जो समय बताया है तो वो समय अब जो है कब आएगा और उन्हें कब आना है। तो भीष्म देव बाणों की सजा में पड़े हैं, वो बाणों की सजा कहाँ पर है? कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और युधिष्ठिर महाराज कहाँ पर हैं? हस्तिनापुर में, उनको हस्तिनापुर का राज्य मिल गया है ना, हस्तिनापुर में है, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र आते हैं ना? और हस्तिनापुर ये दिल्ली नहीं है, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर अलग है, गंगा जी के किनारे है ना, तो सबको पता होना चाहिए हस्तिनापुर दिल्ली नहीं है। हम लोग दिल्ली सोचते हैं ना, दिल्ली नहीं है हस्तिनापुर, हाँ, जहाँ पर शुकताल है ना, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई, तो हस्तिनापुर के पास है, गंगा के तट पर है हस्तिनापुर, अभी भी हस्तिनापुर ही वो जाना जाता है। तो वहाँ से अब कहाँ पर आए युधिष्ठिर महाराज? कुरुक्षेत्र में आए हैं। तो ये देखा उन्होंने कि सूर्यदेव दक्षिणायन से निवृत्त हो गए और उत्तरायण पर आ गए, तो याजकों से घिरकर हस्तिनापुर से बाहर निकले। याजक, याजक मतलब जो पूजा पाठ करने वाले हैं, है ना, कि भीष्मदेव अब शरीर छोड़ेंगे, इच्छा मृत्यु का वरदान उनको प्राप्त है, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, तो जितने भी याजक लोग हैं उन सबको लेकर के आए। युधिष्ठिर ने भीष्म जी का दाह संस्कार करने के लिए पहले से ही सब सामग्री ली, क्या? घृत, माल्य, गंध, रेशमी वस्त्र, चंदन, अगुरु, काला चंदन और मालाएं, अनेक प्रकार के रत्न, ये सब पहले से भेज दिए थे। युधिष्ठिर महाराज राजा धृतराष्ट्र के साथ आए, राजा धृतराष्ट्र उनके साथ हैं, और कौन है? गांधारी देवी हैं, माता कुंती हैं और अपने सब भाई, उनके चारों भाई हैं, और पीछे भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं, विदुर जी चल रहे हैं, युजुत्सु और सात्यकी। युजुत्सु जानते कौन है? युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का ही पुत्र है जो वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुआ। तो 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के और एक कन्या थी जो गांधारी से पैदा हुई थी। युधिष्ठिर जो है दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था जो कि जीवित रहा, महाभारत युद्ध में जीवित रहा, तो उसने पांडवों के पक्ष में आ गया था, है ना। तो युधिष्ठिर भी साथ में है। और राजा युधिष्ठिर अपने ठाट बाट से संपन्न थे, राजा के वैभव ठाट बाट से संपन्न थे। क्यों ठाट बाट, राजा का ठाट बाट क्यों? क्योंकि भीष्म देव चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज का ठाट बाट देखें, क्योंकि उन्होंने जो देखा युधिष्ठिर का पांडवों का दुर्दशा ही देखी, और उनको राज्य का अधिकार मिलना था, उनको राज्य का अधिकार नहीं मिला, उनके साथ अन्याय हुआ। तो भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ने से पहले क्या देखना चाहते हैं? युधिष्ठिर का ठाट बाट देखना चाहते हैं। इसलिए युधिष्ठिर भीष्मदेव की प्रसन्नता के लिए अपने ठाट बाट के साथ आए। और युधिष्ठिर महाराज की स्तुति की जा रही थी, भीष्म जी के द्वारा स्थापित की हुई 3 प्रकार की अग्नियों को आगे रखकर स्वयं पीछे पीछे चल रहे थे। 3 प्रकार की अग्नियां भीष्मदेव ने स्थापित की हैं, उनकी रक्षा करते हुए कि अग्नि ना बुझे, तीनों प्रकार की अग्नियां भी साथ साथ चल रही हैं। इंद्र की भांति अपनी राजधानी से बाहर निकले और कुरुक्षेत्र में भीष्म जी के पास जा पहुंचे। उस समय वहां व्यास जी पहले से हैं, कहां पर? कुरुक्षेत्र में। भीष्म जी के पास जो है व्यास जी पहले से हैं, देवर्षि नारद हैं, असित और देवल ऋषि, कितने? 4। 4 ऋषि जो है पहले से भीष्म जी के पास बैठे हुए हैं। उपास्यमान व्यासेन पाराशर्येण धीमतां नारदेन च राजर्षे देवलेन आसितेन च। और अनेक प्रकार के देशों से आए हुए राजा जो मरने से बच गए वे भी रक्षक बनकर भीष्म जी की रक्षा कर रहे हैं, चारों से रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो क्या है, गिद्ध हैं और हिंसक जंतु हैं, है ना। तो भीष्म जी की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि राजा लोग रहें वहां, हथियार लेकर के हिंसक जंतुओं को दूर करें। युधिष्ठिर दूर से ही बाण शैया पर सोए हुए भीष्म जी को देखकर भाइयों सहित रथ से उतर पड़े। जहां से देखा कि बाण शैया पर सोए हैं, रथ से उतर पड़े, शिष्टाचार है, अब रथ पर नहीं चल सकते। जहां दिखाई दे रहे हैं कि बाणों की शैया पर सोए हुए हैं, तो पैदल चलना शुरू कर दिया उन्होंने। युधिष्ठिर ने सबसे पहले पितामह को प्रणाम किया, उसके बाद व्यास आदि ब्राह्मणों को मस्तक झुकाया, उन सबने भी उनका अभिनंदन किया। तब युधिष्ठिर ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ऋतुजों भाइयों और ऋषियों से घिरे और बाण शैया पर सोए हुए भीष्म जी से भाइयों सहित इस प्रकार बोले। अब युधिष्ठिर बोल रहे हैं, क्या बोले? हे गंगा नंदन, किसको कह रहे हैं? भीष्म जी को। हे गंगा नंदन, मैं युधिष्ठिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। यदि आपको मेरी बात सुनाई देती हो तो आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस समय भीष्म जी की आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं। क्यों आंखें बंद हैं? अब जो भी हो, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, है ना, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो उनकी आंखें बंद हैं। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि आपको मेरी आवाज सुनाई देती हो तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। युधिष्ठिर हम नृपते नमस्ते जाह्नवी सुत श्रणो से चेन महाबाहो ब्रोहि किम कर वाणी ते। हे प्रभु, आपकी अग्नियों और आचार्यों ब्राह्मणों और ऋतुजों को साथ लेकर मैं अपने भाइयों के साथ ठीक समय पर आ पहुंचा हूं। तो आज के दिन युधिष्ठिर आए, आपके पुत्र राजा धृतराष्ट्र भी अपने मंत्रियों के साथ उपस्थित हैं और महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पधारे हुए हैं। पुत्रस्य ते महाते तेजा धृतराष्ट्रो जनेश्वरां उपस्थितः सहामात्यो वासुदेवश्च वीर्यवान। युद्ध में मरने से बचे हुए समस्त राजा और कुरु जंगल देश की प्रजा भी उपस्थित है। आप आंखें खोलिए और इन सबको देखिए। क्या कह रहे हैं आप? क्या करिए? आंखें खोलिए और सबको देखिए, हम सब लोग जो है आपकी सेवा में आए हैं। आपके कथनानुसार इस समय के लिए जो कुछ संग्रह करना आवश्यक था वो सब जुटाकर मैंने यहां पहुंचा दिया है। सभी उपयोगी वस्तुओं का प्रबंध कर लिया गया है। तो वैशंपायन जी सुना रहे हैं ये कथा किसको? जन्मेजय को। जन्मेजय कौन है? राजा परीक्षित के पुत्र हैं। राजा परीक्षित के पुत्र है और वैशंपायन व्यास जी के शिष्य हैं। तो वैशंपायन कहते हैं जन्मेजय परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर भीष्म जी ने आंखें खोलकर अपने को सब ओर से घेर कर खड़े हुए संपूर्ण भरत वंशियों को देखा। सब ओर से घेरे हुए हैं, उन्होंने आंखें खोली तो देखा सब लोग जो है घेर करके खड़े हैं। फिर भीष्म ने युधिष्ठिर की विशाल भुजा हाथ में ली। युधिष्ठिर की भुजा भीष्म जी ने अपने हाथ में ली और समयोचित वचन कहा, हे कुंती नंदन, सौभाग्य की बात है कि तुम मंत्रियों सहित यहाँ आ गए। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर लौट चुके हैं। इन तीखे बाणों की सैया पर शयन करते हुए आज मुझे 58 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो चुके हैं? 58 दिन हो चुके हैं। बाणों की सैया में लेटे हुए मुझे 58 दिन हो चुके हैं, किंतु ये दिन मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। ये 58 दिन मेरे 100 वर्षों के समान बीते हैं, है ना? आर पार हैं बाण, है ना? बाण इधर से और नोक पीछे गई है और बाणों की नोक जो है जमीन पर है और वो जो है ऐसे लेटे हुए हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं, है ना? 58 दिन। अब 58 दिन का हिसाब आप लगा सकते हैं कि कैसे 58 दिन हुए। आप जानते हैं कि गीता जयंती का जो दिन होता है वो मोक्षदायक एकादशी होती है। उस दिन से महाभारत युद्ध शुरू हुआ, जिस दिन भगवान ने गीता सुनाई थी अर्जुन को, है ना? मोक्षदायक एकादशी, है ना? तो वो एकादशी अग्रहण के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, ठीक है ना? तो अग्रहण का महीना का जो है 5 दिन तो ये हो गए, एकादशी से पूर्णिमा तक अग्रहण समाप्त हो गया। अग्रहण के बाद फिर कौन सा महीना आता है? पूष। तो पूष के 30 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 5 और 30 35 दिन हो गए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर पौष के बाद है? हाँ, तो माघ, अग्रहण के बाद माघ। हाँ, अग्रहण के बाद माघ, तो 5 और माघ के 30 दिन 35 दिन हो गए। और फिर पौष के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन, तो 35 और 15 50 हो गए। और अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी 8 दिन, 58 दिन। तो भीष्म जी उस दिन से गिन रहे हैं अपने बाणों की सैया को जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ था, क्योंकि बाण तो आर पार उनके हो ही रहे थे तो वो फिर भी युद्ध कर रहे थे, तो उसी दिन से उनके शरीर में बाण आर पार होने शुरू हो गए थे भीष्म जी के शरीर में। तो भीष्म जी 58 दिन जो बता रहे हैं, आज के दिन जो है 58 दिन पूरे होते हैं, है ना? तो भीष्म जी कह रहे हैं कि बाणों की सैया पर मुझे लेटे हुए 58 दिन हो गए हैं। युधिष्ठिर से ऐसा कहकर भीष्म ने धृतराष्ट्र को पुकार कर उनसे ये बात कही। अब धृतराष्ट्र से बोले, युधिष्ठिर से इतनी बात बोले भीष्म जी, युधिष्ठिर से इतनी बात बोले, इसके बाद किससे बोले? धृतराष्ट्र से। क्या बोले? राजन, तुम धर्म को अच्छी तरह जानते हो, तुमने अर्थ का भली भांति निर्णय किया है, अब तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि तुमने अनेक शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले बहुत से विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है, उनके सत्संग से लाभ उठाया है। तुम चारों वेदों, संपूर्ण शास्त्रों और धर्मों का रहस्य जानते हो, समझते हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वो अवश्यंभावी था, तुमने व्यास जी से देवताओं का रहस्य भी सुन लिया है। ऐसे देवताओं का रहस्य सुन लिया है कि देवताओं की ये सब योजना थी, ये जो होना था ये देवताओं की योजना से हुआ है। ये पांडव जैसे राजा पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही धर्म की दृष्टि से तुम्हारे भी पुत्र हैं। ये सदा गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं, तुम धर्म में स्थित रहकर अपने पुत्रों के समान ही इनका पालन करो। धृतराष्ट्र से क्या कह रहे हैं कि तुम अभी भी पिता हो, जैसे पहले तुम पिता थे और तुम्हारे पुत्र कर रहे थे जो भी अन्याय कर रहे थे, जो भी थे, फिर भी तुम्हारे पिता का सम्मान मिल ही रहा था, अभी भी तुम पिता हो, युधिष्ठिर का हृदय बहुत ही शुद्ध है, ये सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगे। मैं जानता हूं इनका स्वभाव बहुत कोमल है, ये गुरुजनों के प्रति बड़ी भक्ति रखते हैं। गुरुजन का मतलब बहुवचन में गुरुजन, तो जो भी अपने सम्मानित हैं वो सब गुरु कहलाते हैं, केवल एक गुरु नहीं है। गुरुजन का मतलब जितने भी सम्मानित लोग हैं सब गुरुजन हैं। तो इनकी भक्ति है गुरुजनों के प्रति बहुत रहे। किनकी? किनकी? युधिष्ठिर महाराज की। तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा थे, जो मारे गए हैं वो तुम्हारे पुत्र कैसे थे? बहुत दुरात्मा थे, क्रोधी थे, लोभी थे, ईर्ष्यालु थे, दुराचारी थे, अतः उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उनके लिए शोक नहीं करना है। भगवान ने भी किया था अशोच्यानाम शोचस्तम, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? पापी दुराचारी अगर मरे तो अच्छा है, पृथ्वी का भार उतरेगा, है ना। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र से ऐसा वचन कहकर भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से अब यह वचन कहा। अब तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पहले युधिष्ठिर से बात की है, फिर धृतराष्ट्र से बात की, अब भगवान कृष्ण से बात कर रहे हैं, है ना। भीष्म जी बोले, भगवान देव देवेश्वर, देवता और असुर सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, अपने तीन पगों से तीनों लोगों को नापने वाले, शंख चक्र गदा धारण करने वाले नारायण आपको नमस्कार है। भगवान देव देवेश सुरासुर नमस्कृत त्रिविक्रम नमस्तुभ्यम शंख चक्र गदाधर। आप वासुदेव, हिरण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराट, अनुरूप, जीवात्मा और सनातन परमात्मा है। वासुदेवो हिरण्यात्मा, पुरुषा सविता विराट, जीवो भूतो अनुरूपस्त्वं परमात्मा सनातनः। कमल नयन श्री कृष्ण पुरुषोत्तम वैकुंठ, आप सदा मेरा उद्धार करें, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। अब आज्ञा मांग रहे हैं किससे? भगवान कृष्ण से। त्रायस्व पुंडरी काक्ष पुरुषोत्तम नित्य सह अनुजानी हिमाम कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम। हे प्रभु, आप ही जिनके परम आश्रय हैं उन पांडवों की सदा आपको रक्षा करनी चाहिए। भीष्म जी को पांडवों की बड़ी चिंता है, पांडवों की बड़ी चिंता है कि पांडवों के साथ बहुत अन्याय हुआ है ना। तो भगवान कृष्ण से भी कह रहे हैं कि आपने ही रक्षा की पांडवों की हमेशा, और आप आगे भी इनकी रक्षा करते रहिए। भीष्म जी कह रहे हैं मैंने दुर्बुद्धि और मंद दुर्योधन से कहा था कि जहां श्री कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां जय विजय है, इसलिए बेटा दुर्योधन तुम श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों के साथ संधि कर लो। ये संधि के लिए बहुत उत्तम अवसर आया है। जब कृष्ण आए थे संधि कराने के लिए तो भीष्म जी ने कहा था, है ना, कि बेटा बहुत अच्छा अवसर है, कृष्ण से मिलकर के संधि कर लो, बहुत अच्छा अवसर है, ये संधि के लिए बहुत उत्तम अवसर आया है। इस प्रकार बार बार कहने पर भी उस मंद बुद्धि मूढ़ ने मेरी ये बात नहीं मानी, और सारी पृथ्वी के वीरों का नाश कराकर अंत में स्वयं काल के गाल में चला गया। रक्षासते पांडवेया भवान ये सांपरायणम उक्तवान अस्मि दुर्बुद्धिम मंदम दुर्योधनम तदा यतस कृष्णस्तपो ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। वासुदेवेन तीर्थेन पुत्र संयाम्य संसाम्य पांडवे संसाधनस्य पराकाल तवेति च पुनः पुनः न च मे तन्वचो मूढ़ा कृतवान सासु मंदधि घातित्वेव पृथ्वीं तथा सा निधनम गतः। हे देव, मैं आपको जानता हूं। कौन कह रहे हैं? भीष्म जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। हे देव, मैं आपको जानता हूं, आप वही पुरातन ऋषि नारायण हैं जो नर के साथ चिरकाल तक बद्रिकाश्रम में निवास करते रहे। नर नारायण, हाँ, त्वां तु जानाम्यहं देवं पुराणं ऋषि सत्तमं नरेण सहितं देव वतर्यां सुचिरोषितम्। देवर्षि नारद और महातपस्वी व्यास जी ने भी मुझसे कहा था कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात भगवान नारायण और नर हैं जो मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। तथा मैं नारदः प्राह व्यासस्य सा सुमहातपां नर नारायणावेतों संभूतो मनुजे स्वीति। श्री कृष्ण अब आज्ञा दीजिए, मैं शरीर का परित्याग करूंगा, आपकी आज्ञा मिलने पर मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आज्ञा दीजिए। हाँ, आपकी आज्ञा से मैं शरीर छोड़ूंगा तो क्या होगा, मुझे परम गति की प्राप्त होगी। सत्वम समाम तम अनुजाने ही कृष्ण मोक्षे कले वरम तो या हम समनुज्ञा तो गच्छे यम परमाम गतिम। तो श्री कृष्ण बोले पृथ्वी पालक भीष्म देव, मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप वसुलोक को जाइए, इस लोक में आपके द्वारा अणु मात्र भी पाप नहीं हुआ है। आप कहाँ जाइए, वसुलोक में जाइए। अनुजाना में भीष्म त्वाम वसून प्राप्नु हे पार्थिव नतेस्ति ब्रजनम किंचिन एह लोके महाद्युति। राजर्षे, आप दूसरे मार्कंडेय के समान पितृभक्त हैं, इसलिए मृत्यु विनीत दासी के समान आपके वश में हो गई है। पितृभक्तों से राजर्षे मार्कंडेय एवापरहम तेन मृत्युस्तव वशे स्थितो भृत्य एवानतः। तो पितृभक्त, तो पिता के भक्त हैं, पिता के भक्त होना उस समय उचित होता है जब पिता भक्त हों कृष्ण के, है ना, तब उचित होता है ना। तो यहाँ शांतनु महाराज, शांतनु कितने समर्पित थे भगवान को, तो इस बात पर वो भगवान कह रहे हैं कि तुम पितृभक्त हो, है ना, तो इस कारण से पिता की भक्ति का जो है महत्व होता है। वैश्व पंजी कहते हैं जन्म जय भगवान के ऐसा कहने पर भीष्म ने पांडवों और धृतराष्ट्र आदि सभी सुहृदों से कहा। अब सबसे बोले, पहले किससे बोले थे, युधिष्ठिर से, फिर किससे बोले, धृतराष्ट्र से, फिर भगवान के, फिर भगवान कृष्ण उनसे बोले, अब भीष्म जी बोले, जितने लोग घेरे हुए हैं सबसे बोल रहे हैं। अब मैं प्राणों का परित्याग करना चाहता हूँ, तुम सब लोग इसके लिए मुझे आज्ञा दो। भगवान से आज्ञा ले ली, अब सबसे आज्ञा ले रहे हैं, ये शिष्टाचार, शरीर छोड़ने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं सबसे, तुम सब लोग मुझे आज्ञा दो, तुम्हें सदा सत्य धर्म के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। हे भरतवंशियों, तुम लोगों को सबके साथ कोमलता का बर्ताव करना, सदा अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखना, और ब्राह्मण भक्त धर्मनिष्ठ और तपस्वी होना चाहिए। ऐसा कहकर भीष्म ने अपने सब सुहृदों को गले लगाया और युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें सभी ब्राह्मणों की विशेषता विद्वानों की और आचार्य और ऋतुजों की सदा ही पूजा करनी चाहिए। इत्युक्त्वा सुहृदा सर्वान् सम्परिष्वज्य चैवहम् पुनरेवा ब्रवीन् धीमान् युधिष्ठिरम् इदं वचः। ब्राह्मणाश्चैव ते नित्यं प्राज्ञाश्चैव विशेषतः आचार्य ऋतुजश्चैव पूजनीया जनाधिप। तो वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, समस्त कौरवों से ऐसा कहकर शांतनु नंदन भीष्म जी दो घड़ी तक चुपचाप पड़े रहे। दो घड़ी कितना होता है, एक घड़ी कितनी होती है, 24 मिनट, तो दो घड़ी मतलब 48 मिनट, एक मुहूर्त 48 मिनट का एक मुहूर्त है, दो घड़ी 48 मिनट तक चुपचाप पड़े रहे, है ना। तब मन सहित प्राण वायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धारणों में स्थापित करने लगे। इस तरह यौगिक क्रिया द्वारा रोके हुए भीष्म के प्राण क्रमशः ऊपर चढ़ने लगे। क्रमशः ऊपर चढ़ने लगे मतलब पैर के तलवे से ऊपर चढ़ा रहे हैं प्राण। वैसे तो लेटे हुए हैं तो प्राण ऊपर थोड़ी जा रहे हैं, लेकिन जो लेटे हैं तो प्राण शरीर में तो ऊपर की दिशा में आ रहे हैं ना, सिर की तरफ आ रहे हैं, पैरों से सिर की तरफ प्राणों को चढ़ाने लगे। उस समय वहां एकत्र हुए सभी संत महात्माओं के बीच एक बड़े आश्चर्य की घटना हुई। सुनने सब लोग, बहुत आश्चर्य, सबके सामने एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है ना, सोच नहीं सकते ऐसा आश्चर्य। कैसा आश्चर्य हुआ, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास आदि सब महर्षियों ने देखा और कि भीष्म के प्राण उनके जिस जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठते थे उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भर जाता था। हरि बोल। पैरों से जो है प्राण ऊपर उठने लगे तो बाण निकल जाते हैं और घाव भर जाता है, कैसे आश्चर्य है। 58 दिनों से बाण आर पार है और इधर से पंखा है उधर से नोक है, निकलना संभव नहीं। कहाँ से निकालेंगे? पंखे से निकालेंगे तो पंखे बहुत मोटे मोटे हैं, इधर से नोक है और नोक भी ऐसी है चोंच की तरह, कहाँ से निकलेंगे? लेकिन बाण भी निकल रहे हैं और घाव भी भर रहे हैं, कितना आश्चर्य है। इस प्रकार सबके देखते देखते भीष्म जी का शरीर क्षण भर में बाणों से रहित हो गया। छड़े न प्रेक्षताम तेसाम विसल्या शोभवत तदा तन्दृष्ट्वा विस्मिता सर्वे वासुदेव पुरोगमा सहतैर मुनि भी सर्वे तथा व्यास आदि भिर्नप। ये देखकर व्यास आदि समस्त मुनियों सहित भगवान श्री कृष्ण को भी बड़ा विस्मय हुआ। भगवान तो सब कुछ जानते हैं लेकिन विस्मय क्यों कर रहे हैं? भगवान भी जो है महत्व बढ़ाते ना, अपने भक्त का महत्व बढ़ाते हैं, तो विस्मित हो रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, भगवान भी विस्मित होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इन घटनाओं में भक्तों को विस्मित होना चाहिए क्योंकि इससे महिमा बढ़ती है। कृष्ण के भी आश्चर्य की घटनाएं होती तो विस्मित होते हैं भक्त लोग, हर्षित होते हैं, है ना। तो भगवान भी विस्मित हो रहे हैं भीष्म के साथ ऐसा आश्चर्य हो रहा है ना। सोचिए बाण आर पार हैं, बाण निकल रहे हैं अपने आप और घाव भी भरते जा रहे हैं, है ना, कितना आश्चर्य। उसी प्रकार का आश्चर्य है कि जब कृष्ण ने वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने सिर में उठाया और निकलने लगे तो कारागार के जंजीरें खुल गई, ताले खुल गए, टूटा कुछ नहीं, खुल गए दरवाजे, खुल गए जंजीरें, खुल गई ताले, खुल गए दरवाजे, खुल गए, और जब बाहर निकल गए तो जो भी हो अपने आप बंद भी हो गए। जब जब वापस जब कन्या को लेके आए तो सब अपने आप ताले भी लग गए, जंजीरें सब कुछ, उनकी हथकड़ी बेड़ियां भी सब कुछ वैसे ही जोगे त्यों। भीष्म जी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राणों को सब ओर से रोक रखा था। तो गीता में भगवान बताते हैं वो प्राण त्याग की विधि जो योगी लोग 8वें अध्याय में करते हैं। सर्व द्वाराणि संयम में मनो हृदय निरुद्धचा मूर्ध्याधा आत्मना प्राणम आर्थितो योग धारणा। तो जब व्यक्ति प्राणों को यहाँ तक लाता है, आज्ञा चक्र या जो भी हो यहाँ पर लाता है तो फिर सर्व द्वाराणि संयम, ये सात द्वार हैं, सात द्वारों को रोक करके प्राणों को ऊपर कि इधर से ना निकले, मुँह से ना निकले, पांच द्वार ये हैं और दो द्वार ये हैं, सातों द्वारों को रोक करके प्राण को कहाँ लाते हैं? इधर लाते हैं सिर से। तो यहाँ पर भी बताया है कि उन्होंने जो है सभी द्वारों को बंद करके प्राणों को सब ओर से रोक रखा था, इसलिए वो उनका मस्तक फोड़कर आकाश में चला गया। तो यहाँ इसको फोड़ करके प्राण निकालते हैं बाहर, है ना, योगी लोग इस प्रकार से प्राण को बाहर निकालते हैं, है ना। तो जो पुण्यात्मा लोग होते हैं उनके प्राण ऊपर के सात द्वारों में से किसी द्वार से बाहर निकलते हैं पुण्यात्माओं के, और जो पापियों के प्राण निकलते हैं मलमूत्र के द्वार से निकलते हैं। नौ द्वारों में से जो नौ दो द्वार नीचे के हैं पापियों के प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं, है ना। तो मल द्वार फट जाता है या मूत्र का द्वार फट जाता है, पेशाब निकल जाती है अगर मूत्र द्वार से निकलते हैं प्राण, या मल द्वार से निकलते तो मल निकल जाता है, इस तरह से प्राण निकलते हैं। और पुण्यात्माओं के प्राण मुंह से निकलते तो मुंह खुला रहे, नाक से निकलते तो नाक तो खुली है, आँख खुली रहती है अगर आँख से निकलते हैं, तो इस तरह से निकल। लेकिन जो योगी लोग होते हैं प्राण को इधर से निकालते हैं, है ना। लेकिन भक्तों के लिए कोई आवश्यकता नहीं। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरत निरसा, अनन्य चित्त जो मेरा स्मरण करते हैं तस्याम सुलभा पार, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। तो उनको उत्तरायण की भी आवश्यकता नहीं कि उत्तरायण का महीना हो या शुक्ल पक्ष का 15 दिन हो, कोई जैसे प्रभुपाद तो दक्षिणायन में शरीर छोड़े तो प्रभुपाद के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी। भीष्म देव भी महाभागवत है, उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी उत्तरायण में शरीर छोड़ें, लेकिन वो दिखाने के लिए कि अगर कोई भक्त नहीं है तो वो योगी जो है अपने ब्रह्मचर्य के बल पर अपने प्राणों को अगर रोकता है तो उसको इस विधि से त्यागना चाहिए, तो उसको सदगति प्राप्त होगी। तो भीष्म दूसरे योगियों को दिखाने के लिए इस विधि का पालन कर रहे हैं, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी ना। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि मस्तक फोड़कर आकाश में प्राण चला गया, उस समय देवताओं की दुंदुभियां बजी। देवता लोग पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, देवता लोग भी तैयार हो गए भीष्म जी का देह त्याग देखने के लिए। तो आकाश से देवताओं की दुंदुभियां बज रही आकाश में, और साथ ही दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी ऊपर से। दिव्य पुष्प, ये दिव्य पुष्प पृथ्वी के फूल नहीं है, ये नंदनवन के फूल हैं, देवता लोग लेकर के आए आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सिद्धियों ब्रह्मर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ, सिद्ध लोग भी आकाश में खड़े हो सकते हैं, महर्षि आकाश में खड़े हो सकते हैं बिना किसी आधार के। तो सब आकाश में जो सिद्ध हैं ब्रह्मर्षि हैं वो जो है हर्ष हो रहे हैं, और भीष्म देव को साधुवाद दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? साधु 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 साधु। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेल डन वेल डन, है ना, है ना। हिंदी में साधु साधु, है ना, या हिंदी में बोलते हैं बहुत अच्छे, है ना। संस्कृत में मतलब साधु साधु। देव दुंदुभिना दश्चा पुष्प वर्ष सह भवन सिद्धा ब्रह्मर्षिश्च व साधु साधुति हर्षिता। भीष्म जी का प्राण उनके ब्रह्मरंध्र से निकलकर बड़ी भारी उल्का की भांति आकाश में उड़ा और क्षण भर में अंतर्धान हो गया। क्षण भर में, क्षण का मतलब चार मिनट, उसमें भी क्षण बताया था कि चार मिनट में जो है शरीर के जितने बाण हैं सब निकल गए। चार मिनट लगा प्राणों को पैरों से लेकर के और यहाँ तक लाने में, तो चार मिनट में उनके शरीर के सब बाण निकल गए। फिर चार मिनट और लगा ऊपर जाने में। माहौल के एवज भीष्म से मूर्ध देशा जनाधिप निस्तृत आकाश माविश्य क्षणे न अंतर धीयत। इस प्रकार भरत वंश का भार वहन करने वाले राजा भीष्म काल के अधीन हुए। तब बहुत से काष्ठ नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर पांडव विदुर और युत्सु ने चिता तैयार की, और शेष सब लोग अलग खड़े होकर देखते रहे। तो किन लोगों ने चिता तैयार की? एक तो पांडव, कितने हैं? पांच, और छठे विदुर, साथ में युत्सु, सात लोगों ने चिता तैयार की, और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। राजा युधिष्ठिर और विदुर इन दोनों ने रेशमी वस्त्रों और मालाओं से भीष्म को आच्छादित किया और चिता पर सुलाया। वो चिता पर उनको सुलाया, अब बाण बिल्कुल नहीं है उनके शरीर में, चिता पर सुलाया, रेशमी वस्त्रों मालाओं से आच्छादित करके चिता पर सुलाया। उस समय युत्सु ने उनके ऊपर उत्तम छत्र लगाया, चिता पर सुलाया, अभी युत्सु ने छत्र लगाया उनके ऊपर, और भीम अर्जुन ने श्वेत चमर और बेजन डुलाए, श्वेत चमर और बेजन डुला रहे हैं। कौन? भीम और अर्जुन। नकुल सहदेव ने पगड़ी हाथ में लेकर भीष्म जी के मस्तक पर रखी। किसने? नकुल सहदेव ने भीष्म के मस्तक पर पगड़ी रखी, और कौरव राज की रनिवास की स्त्रियां ताड़ के पंखे हाथ में लेकर भीष्म जी के शव को सब ओर से हवा करने लगे। ताड़ के पंखों से हवा कर रहे स्त्रियां। तब पांडवों ने भीष्म जी का पितृमेध कर्म संपन्न किया, अग्नि में बहुत सी आहुतियां दी गईं। साम गान करने वाले ब्राह्मण साम मंत्रों का गान करने लगे, और धृतराष्ट्र आदि ने चंदन की लकड़ी, काली चंदन और सुगंधित वस्तुओं से भीष्म के शरीर को आच्छादित करके उनके चिता में आग लगाई। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवों ने इस जलती चिता की प्रदक्षिणा की। सब लोग जो है प्रदक्षिणा कर रहे हैं। समोच्छाद्य गांगेयम संप्रज्वाल हुतासनम अब सव्यम कुर्वन्त धृतराष्ट्रम मुखाश्चिताम। इस प्रकार भीष्म जी का दाह संस्कार करके समस्त कौरव अपनी स्त्रियों को साथ लेकर ऋषि मुनियों से सेवित परम पवित्र गंगा जी के तट पर आए। उनके साथ कौन कौन है सुनिए, उनके सबके साथ कौन है, व्यास, देवर्षि नारद, असित देवल, श्री कृष्ण और नगर निवासी मनुष्य पधारे हैं। वहां पहुंचकर उन सब क्षत्रियों ने और सब लोगों ने विधि पूर्वक भीष्म जी को जलांजलि दी। उस समय कौरवों द्वारा अपने पुत्र भीष्म को जलांजलि देने का कार्य पूरा होने पर गंगा जी जल के ऊपर प्रकट हुई। माता जिसने भीष्म को जन्म दिया वो गंगा माता जो है प्रकट हुई, उनके लिए बहुत दुख की बात है, उनका ही पुत्र है जिसने गंगा जी से जन्म लिया था, तो वो जो है शोक से बेहबल हो रोदन और विलाप करती हुई कौरवों से कहने लगी कि हे पुत्रो, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। भीष्म राजा के समान सदाचार से संपन्न थे, उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ कुल से संपन्न थे। निबोधते यथा वृत्तम उच्चमान मया नघाम राजवृत्तेन संपन्ना प्रज्ञया भेजनेन च। तो भीष्म कुरुकुल वृद्ध पुरुषों के सत्कार करने वाले अपने पिता के बड़े भक्त थे। हाय, पूर्व काल में परशुराम जी अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा जिस पुत्र को पराजित ना कर सके वो आज शिखंडी के हाथ से मारा गया। गंगा जी जो है बहुत शोक कर रही हैं कि परशुराम जी भी नहीं मार पाए भीष्म को, हैं इतने पराक्रमी परशुराम जी, 21 बार पूरी पृथ्वी में क्षत्रियों का संहार किया तो वो भी नहीं मार पाए भीष्म को और शिखंडी के हाथ से मारा गया। तो शोक करने की बात यह है गंगा जी। परशुराम जी के साथ जब युद्ध हो रहा था तो सारथी जब मर गया, परशुराम जी ने सारथी को मार दिया, तो गंगा जी स्वयं भीष्म जी के रथ को चलाने लगी थी। तब भीष्म जी ने माता गंगा से कहा कि माता आप जाओ, आप जो है मैं युद्ध करूंगा, आप जाओ। तो गंगा जी फिर जो है घोड़ों की लगाम छोड़ करके चली गई, लेकिन अपने पुत्र के स्नेह के कारण वो रथ चलाने लगी थी गंगा जी, भीष्मकर तो सारथी का काम करने लगी थी। तो अभी गंगा जी जो है बहुत दुखी हो रहे हैं। ये कितने कष्ट की बात है कि मेरा पुत्र किसके हाथ मारा गया, शिखंडी के हाथ। राजाओ, अवश्य ही मेरा हृदय पत्थर लोहे का बना है, तभी तो अपने प्रिय पुत्र को जीवित ना देकर आज फट नहीं जाता है। मेरा हृदय कैसा है। अस्मसारमयम नूनम हृदय मम पार्थिवाम अपश्यंत्या प्रियम पुत्रम यन्न धीर्यति मे द्यवै। काशीपुरी के स्वयंवर में समस्त पृथ्वी के क्षत्रिय एकत्र हुए, किंतु भीष्म ने एक रथ की सहायता से उन सबको जीता था। कितना पराक्रम था। काशीराज के स्वयंवर में जो तीन पुत्रियां थी काशीराज की, अंबिका अंबालिका है ना, उनके स्वयंवर में एक रथ की सहायता से सब राजाओं को जीता भीष्म जी अकेले, और तीन कन्याओं का अपहरण किया था। हाय, इस पृथ्वी पर बल में जिसकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है, उसी को शिखंडी के हाथ से मारा गया सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती। जिस वीर ने परशुराम को कुरुक्षेत्र के युद्ध में अनायास ही पीड़ित कर दिया था, इसी कुरुक्षेत्र में परशुराम जी के साथ युद्ध हुआ था, वही शिखंडी के हाथ से मारा गया, ये कितने दुख की बात है। ऐसी बातें कहकर गंगा जी बहुत विलाप करने लगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, भगवान कृष्ण ही बता सकते हैं उनको, और कौन बात करेगा गंगा जी से। तो भगवान कृष्ण बोले कि हे देवी, धैर्य धारण करो, तुम शोक न करो, तुम्हारे पुत्र भीष्म उत्तम लोक में गए हैं, इसमें संशय नहीं है। समाशुचि ही भद्रे तुम मां सुचाशु दर्शने गता परमम लोकम तव पुत्रो न संशय। हे देवी, ये महा तेजस्वी वसु थे, वशिष्ठ जी के साप से इन्हें मनुष्यों में आना पड़ा, अतः इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। देवी, इन्होंने युद्ध में क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध किया, अर्जुन के हाथ से मारे गए, शिखंडी के हाथ से नहीं मारे गए। भगवान कहते हैं शिखंडी के कारण तो भीष्म जी युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन शिखंडी के बाण तो उनके शरीर में खरोंच भी पैदा नहीं कर रहे थे। भीष्म कहते हैं कि शिखंडी के बाण जो है मेरे शरीर में खरोंच भी पैदा नहीं कर रहे हैं, अर्जुन के बाण सीधे आर पार हो जाते हैं। और भीष्म जी हमेशा ही कहते ये बाण अर्जुन का है जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, और इस तरह से अर्जुन की प्रशंसा भी कर रहे हैं, अर्जुन के बाण ही मुझे कष्ट पहुंचाते हैं, ये अर्जुन के बाण हैं, अर्जुन की प्रशंसा करते हैं भीष्म। और शिखंडी के बाण मुझे कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, खरोंच भी नहीं पैदा होती है शिखंडी के बाणों से, ये भीष्म जी ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो भगवान भी बोले कि नहीं नहीं, शिखंडी के द्वारा नहीं मारे गए, अर्जुन के द्वारा मारे गए। तो जो है ये गौरव की बात है, ये प्रशंसा की बात है, अर्जुन के द्वारा मारे गए, है ना। और वो भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र हैं, तो उनके द्वारा अगर मारे गए तो बड़ी प्रशंसा की बात है, हर्ष की बात है, तो शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कहते तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। स एष धर छत्र धर्मेण अयोध्यतरणाजिरे धनंजय न निहितो न सिद्धेवी शिखंडिना। तुम्हारे पुत्र कुरुश्चित भीष्म जब हाथ में धनुष बाण लिए रहते उस समय साक्षात इंद्र भी उन्हें युद्ध में नहीं मार सकते थे, ये तो अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग कर स्वर्ग लोग गए हैं। तो भीष्म को भी भगवान ने महत्व दिया कि शिखंडी को सामने किया कि भीष्म युद्ध ना करें, अर्जुन मारे। तब अर्जुन तो वैसे मार सकते थे भीष्म को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि भीष्म अपने धनुष बाण छोड़ें, लेकिन भीष्म को भी गौरव देने के लिए, भीष्म का भी जो है सम्मान बढ़ाने के लिए भाई उन्होंने जो है जब युद्ध बंद कर दिया तब अर्जुन ने मारा, है ना। तो ये भी भीष्म की का महत्व बढ़ा इस तरह से। हे देवी, संपूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध में उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते थे, इसलिए तुम भीष्म जी के लिए शोक मत करो, ये तुम्हारे पुत्र वसुओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, अतः इनके लिए चिंता रहित हो जाओ। वैष्णव पंडित जी कहते महाराज, जब श्री कृष्ण और व्यास जी ने इस प्रकार समझाया तब गंगा जी शोक त्याग कर अपने जल में उतर गए, जल में चली गई, जल से बाहर निकली थी, जल के अंदर चली गई। श्री कृष्ण आदि सब राजा गंगा जी का सत्कार करके उनकी आज्ञा लेकर वहां से लौट आए। इस प्रकार से भीष्म स्वर्गारोहण पर्व में ये 168वां अध्याय पूरा हुआ है, अनुशासन पर्व का अंतिम अध्याय है। तो हमने आपको करीब करीब दो अध्याय पढ़ करके सुनाए हैं भीष्म जी के देह त्याग के संबंध में, और इसमें बहुत ये रोचक विषय है। तो आप लोगों की ओर से अभी कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ जी बोलिए। अच्छा प्रश्न है कि भगवान के सामने भगवान के धाम जाएंगे, है ना, तो वसुलोक में क्यों गए? तो उसका एक उत्तर तो ये है कि जो भक्त होते हैं तो वो इस भौतिक जगत में रहें या आध्यात्मिक जगत में रहें, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि वे भक्ति में, तो जो 12 महाजन हैं उनमें एक भीष्म भी हैं, तो इस सृष्टि के अंदर हैं, ब्रह्मा हैं, नारद हैं, मनु हैं, तो अभी भी सृष्टि के अंदर हैं ये। तो अगर ये नहीं अगर जाते भगवान के धाम में, तो भगवान की आज्ञा से जहाँ भी रहते हैं वही वैकुंठ है, है ना। तो एक दूसरा उत्तर जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि प्रभुपाद कहते हैं कि वो जो है पार्थ सारथी के लोक में गए, भीष्म जी पार्थ सारथी, जहाँ पर भगवान कृष्ण यही लीला करते हैं। तो एक ऐसा भी वैकुंठ है जहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में लीलाएँ करते हैं, और भीष्म जी भगवान के इस रूप से बहुत आसक्त थे तो उस स्थान में गए। तो जो भी हो ये अलग अलग कल्प के अनुसार भी ये घटना में जो है ये परिवर्तन है। तो यहाँ पर बताया कि भीष्म जी वसु लोक में गए, ये एक वो वसु हैं जिस वसु को वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था, है ना। तो उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दिया था कि तुम लोग मनुष्य लोक में जाओ, लेकिन जब बाद में पता चला कि 7 वसु तो बिल्कुल निर्दोष हैं, एक ही वसु ने उनकी गाय चुराई थी, वशिष्ठ जी की नंदिनी नाम की गाय एक ही वसु ने चुराई थी, तो फिर वसु लोग बोले कि हम लोग तो निर्दोष हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा फिर ठीक है, तो तुम लोग तो जल्दी वापस वसु लोक में चले जाओगे जन्म लेकर के, कि मेरा सांप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन तुम लोग जन्म लेकर तुरंत ही वसु लोक में चले जाओगे, लेकिन ये जो है ज़्यादा समय तक रहेगा इस पृथ्वी में, है ना। तो इस तरह से वो जो वसु था तो उसको सांप के कारण इस पृथ्वी में रहना पड़ा, है ना। फिर जीव गोस्वामी ने यह भी बताया कि भीष्म देव के शरीर में वो वसु था, भीष्म दो आत्माएं थी शरीर में, भीष्म देव अलग है, वो वसु अलग था, है ना। तो वो वसु को जो है सांप का कष्ट मिला कि उसने अपनी पत्नी के कहने से गाय को चुराई थी, तो उसको जो है वो अविवाहित रहा, उसका विवाह नहीं हुआ, है ना। तो ये भी सांप के कारण उसको विवाह है, उसका विवाह नहीं हुआ है। लेकिन जो भीष्म देव हैं तो वो तो दिव्य स्थिति है उनकी, है उनकी, उनको थोड़ी इस बात का कष्ट है कि उनका विवाह नहीं हुआ। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं विचार करने की, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ जी, नहीं परीक्षित का जब जन्म हुआ, नहीं जब परीक्षित का जब जन्म हुआ तो महाभारत का जो युद्ध है वो उस समय परीक्षित उत्तराखंड में थे और जन्म हुआ, है ना। और उसके बाद फिर परीक्षित की रक्षा की भगवान अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, फिर परीक्षित का जन्म हुआ, फिर उन्होंने जो है राज्य किया। जन्म जाए ना, तो 36 साल के बाद, 36 साल के बाद यदुवंश का संहार हुआ, है ना। और उसके बाद भी परीक्षित राज्य करते रहे। तो परीक्षित ने अपना शरीर छोड़ा 100 वर्ष की आयु में, तो 100 वर्ष की आयु में, तो जन्मेजय को उन्होंने राज्य दे दिया था, तब परीक्षित जो है गंगा तट पर आए भागवत सुनने के लिए, ठीक है ना। तो महाभारत युद्ध के 100 वर्ष के बाद परीक्षित ने अपना शरीर छोड़ा और फिर जन्मेजय ने सर्प सत्र किया, सर्पों को मारने का एक यज्ञ किया। तो फिर उसको जो है रोकने के लिए एक ऋषि आए, उन्होंने उसको रोका। उन ऋषि का नाम क्या था, अभी याद नहीं आ रहा, आस्तिक, आस्तिक नाम के ऋषि, आस्तिक नाम के ऋषि ने उस यज्ञ को रोका। और उसके बाद फिर व्यास जी आए, तो जन्मेजय ने फिर मतलब ये प्रश्न किया कि हमारे जो पूर्वज थे, मतलब पिता के पितामह, तो उनका क्या चरित्र है, कैसा चरित्र हुआ। तो उसमें व्यास जी ने आज्ञा दी वैशंपायन को कि तुम इनको सुनाओ। तो व्यास जी के शिष्य जो है वैशंपायन पूरे महाभारत सुना रहे हैं जन्मेजय को, ठीक है। अभी हमारे पास समय है, और कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका? मैं प्रश्न करूं, ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। तो भीष्म देव ने आज के दिन अपना शरीर छोड़ा, है ना, और उन्होंने कहा कि 58 दिन हो गए, 58 दिन हो गए मुझे बाणों की सैया पर सोते हुए, है ना। तो 58 दिन का हिसाब क्या है, किस प्रकार से, किस दिन से महाभारत युद्ध शुरू हुआ था? मोक्ष एकादशी। तो मोक्ष एकादशी से आज जो है पौष शुक्ल अष्टमी, माघ, माघ नहीं, माघ है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो पौष के बाद माघ, तो माघ शुक्ल अष्टमी तक जो है 58 दिन पूरे होते हैं, ठीक है ना। 10वें दिन सैया पर गिरे थे, लेकिन वो अपने वो जो है दिन वो गिन रहे हैं उस दिन से जिस दिन महाभारत युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि बाण लगने शुरू हो गए थे उनके शरीर में, बाण लगने शुरू हो गए थे, और वो बाण आर पार होते थे, और उसमें भी जो है वो चलते फिरते खाते पीते सोते सब सब थे, ऐसा शरीर था, सोचिए ऐसा शरीर था। दुर्योधन को भी जो है भीम ने जब बाण आर पार कर दिए तो वो जो है कहता है अगले दिन सवेरे भीष्म जी से कि पितामह भीम ने मुझे ऐसे बाण मारे हैं कि मैं रात में ठीक से सो नहीं पाया। तो मतलब ठीक से सो नहीं पाया, बस इतनी दिक्कत है, बाकी बाण आर पार हैं उसके। तो भीष्म जी ने कुछ दवाई दी, ये दवाई तुम जो है इसको खाओ तो बाण अपने आप निकल जाएंगे। तो बाण निकल गए दुर्योधन के शरीर से। तो बाण आर पार हो जाते हैं या बाण निकल करके और चला भी जाता है, या तो घुस के आर पार बना रहता है बाण या निकल जाता है, तो भी ये योद्धा जो है ऐसे थे, युद्ध करते रहते, अब आज के समय में कोई विश्वास नहीं करेगा, ऐसा कैसे सकता है, एक गोली लगती तो खत्म काम है, और यहाँ बाण आर पार हो जाए, इतना बड़ा बाण है ना, और इतनी बड़ी नोक उसकी अंदर घुस गया है ना, और उधर पीछे पंखे हैं, कैसे जो है मतलब कोई जिंदा रहेगा। तो कहेंगे सब ये जो है कपोल कल्पना है, मैथोलॉजी, क्या बोलते हैं, काल्पनिक है ना, कपोल कल्पना। तो लोग जो है विश्वास नहीं करते। हम लोग हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, चार नियमों का पालन कर रहे हैं, तो जो है विश्वास होता है कि ये सब सत्य हैं। अच्छा, अब मेरा प्रश्न ये है कि उत्तरायण का जो समय है वो तो शुरू हो जाता है मकर संक्रांति से 14 जनवरी को, तो फिर इतना समय क्यों इंतजार किया? उत्तरायण का समय तो शुरू हो गया था 14 जनवरी मकर संक्रांति से, तो 14 जनवरी या 15 जनवरी वही मतलब होता है उत्तरायण का समय, कभी 14 जनवरी पड़ती है कभी 15 जनवरी पड़ती है। तो अब इसका उत्तर कौन देगा कि ये आज की तारीख तक हाँ उन्होंने इतना इंतजार क्यों किया, इसका क्या? हाँ जी, और कोई उत्तर? हाँ, शुक्ल पक्ष भी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो शुक्ल गति होती है तो उसमें क्या होता है कि षण्मासा उत्तरायणम है ना, अग्निर्ज्योति रहा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम, अग्नि का समय हो फिर ज्योति का समय हो फिर दिन का समय हो और फिर उत्तरायण के 15 दिन का समय, नहीं, शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय हो, अग्निर ज्योति रहा शुक्ला, अग्नि का समय फिर ज्योति का समय फिर दिन का समय और फिर शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय फिर उत्तरायण का समय है ना। तो उस समय जो जो 14 जनवरी जो आई थी उस समय कृष्ण पक्ष चल रहा था, कृष्ण पक्ष चल रहा था, तो फिर जो निकट जो शुक्ल पक्ष आया वो ये था। इस बार तो ज़्यादा, इसमें ज़्यादा समय लग गया ना, और पहले भी शुक्ल पक्ष आ चुका है, 14 जनवरी के बाद भी शुक्ल पक्ष आ चुका है, लेकिन उस समय 14 जनवरी के बाद जो शुक्ल पक्ष आया था वो यही था पौष का, पौष या माघ, माघ मैं भूल जाता हूँ, तो माघ का जो शुक्ल पक्ष है वो 14 जनवरी के बाद जो पहली बार शुक्ल पक्ष आया वो ही आया। और शुक्ल पक्ष भी जो है बीच का जो दिन है वो अष्टमी होती है, 15 दिन जो शुक्ल पक्ष हैं उन्हें बीच का दिन होता है वो अष्टमी है ना। तो शुक्ल पक्ष का के 15 दिन उसका भी बीच का दिन है वो सबसे बढ़िया होता है, शुभ होता है ना। फिर दिन में भी समय जो है अग्निर ज्योति आहा, तो कुछ समय जो है ज्योति का होता है और कुछ समय अंधकार का होता है, दिन में भी समय चलता रहता है, तो वो अग्निर अग्नि का समय या धुएं का समय ये दिन में भी चलते रहते हैं, तो वो समय होना चाहिए अग्नि का समय होना चाहिए, ज्योति का समय होना चाहिए, उस समय वो प्राण छोड़ते हैं, तो वो सब समय जो है वो विचार करते हैं कि हमें ये समय शरीर छोड़ना है, तो ऐसे जो योगी लोग होते हैं वो विचार करते हैं। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं, भक्तों के लिए क्या आवश्यक है ऐसा करना, भक्तों की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे प्रभुपाद ने कोई विचार नहीं किया है, तो उन्होंने तो दक्षिणा में शरीर छोड़ा ना, 14 जनवरी को उत्तरायण शुरू होता है तो उसके पहले 6 महीने तो दक्षिणा ही के होते ना, तो प्रभुपाद ने जो शरीर छोड़ा 14 नवंबर थी ना, 14 नवंबर तो दक्षिणायन का था, तो दिन हो रात हो या उत्तरायण हो दक्षिणायन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे है ना। जो भक्त लोग होते हैं भगवान उसी अध्याय में कहते हैं अनन्य चेता शततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य योग तस्य योगिना। और भीष्मदेव भी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, महाभागवत हैं, तो उनको क्या आवश्यकता थी उत्तरायण में शरीर छोड़ने की है? क्या आवश्यकता थी उनको भीष्मदेव को है? नहीं थी, फिर क्यों किया? हाँ, जो लोग भक्ति में नहीं हैं और जो योगी हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ब्रह्मचर्य के पालन से ही कोई व्यक्ति ऐसी शक्ति प्राप्त करता है कि प्राणों को ऊपर उठा सकता है। धन्यवाद। श्री भीष्मदेव तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।